Ona gelen de neden düşün, yanan denen şu belki ayacak. Şöyle onu bir tanıyor, resmen şu gülü benim. Suyu seyzen hemen o beşten ustabitem, yeni hızlı resmen bir bu kadar ayağında da atlı sıradan tıkam. Cezi kışta çeydeni bramın tiyanında sürdü, hiç kadar da sivası de kovru baktırındı. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Who is this Nikunja Chauhan?
Prabhu, that is Asimal. Asimal Prabhu.
Oh, okay.
He doesn't have a smartphone, so he's joining from some of his relatives' smartphone.
Okay.
So I have told him to change his name.
Okay. So, अभी तक हमने चर्चा किया था भगवान ने अपनी भक्ति योग का महिमा विस्तारित किया. भगवान ने कहा कि आप मुझे तभी समझ सकते हो. वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम एज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड ऑनली बाय डिवोशनल सर्विस. और कोई तरीका है ही नहीं. When one is fully conscious of me by such devotion, he can enter into my kingdom of God. तब वो व्यक्ति मेरे धाम में प्रवेश कर सकता है. श्री प्रभुपाद जी ने भी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा. अब कृष्ण आगे के जो श्लोक है उसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से भक्ति के विषय में बात करेंगे और साथ साथ वो शरणागत होने के लाभ और जो परिणाम होते हैं उसके विषय में भी चर्चा करेंगे. सो वी वांट डिवोटीज समबडी कैन रीड टेक्स्ट नंबर 56.
रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं
ना. आई या आई कैन गिव यू रिकॉर्डिंग ऑल्सो. इज देवराम. यस ओके ठीक है. सो वी कैन स्टार्ट.
मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है.
इस स्मॉल परपट इफ यू कैन रीड दिस.
मद व्यपाश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में. भौतिक कलमश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है. उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है. वह सदा 24 घंटे शत प्रतिशत परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है. ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में अनंतोगत्या दिव्य धाम या करुणा लोक ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं. वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततोगत्वा दिव्य धाम का कृष्ण लोक को प्राप्त करता है. वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है. इसमें कोई संशय नहीं है. उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता. वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत अनिश्वर अविनश्वर तथा ज्ञान में होती है.
So, भगवान पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त जो केवल वही व्यक्ति वास्तव में मुझे समझ सकता है जिसमें भक्ति हो, तो ये चीज़ तो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपके पास धन है, आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, आपके पास सुंदरता है, आपके पास विद्वत्ता है, नॉलेज है, ये सारी चीज आपको कृष्ण भक्ति में विकसित या आगे बढ़ने के लिए रिक्वायरमेंट में लिस्ट में नहीं आती. ये सारी जो चीज़ है जितनी भी हमने बताई, ये सारी चीज़ से कृष्ण को नहीं जान सकता कोई. नोबडी कैन अंडरस्टैंड कृष्ण. कोई कृष्ण को नहीं समझ सकेगा और कोई भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता अगर वो केवल अपने धन से, अपनी बुद्धि से, उस तरह से वो भक्ति में आगे बढ़ने का सपना लेके बैठा हुआ है. इसलिए भक्तों को हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर कुछ संपत्ति है तो वो संपत्ति भगवान के प्रति हमारा प्रेम है और कुछ है ही नहीं. और कोई संपत्ति इसके अतिरिक्त है ही नहीं जो कि भगवान को आकर्षित कर सकते। भक्ति ते जहारा पायलो गोविंद चरण, जय जय नागपत्नी नाग बोले से जय जय द्विज पत्नी नाग कन्याधन, जिसके विषय में कहा जाता है कि केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, एक ही क्वालिफिकेशन है भक्ति के, भक्ति ते जहारा पायलो, आपके हृदय में भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, परंपरा के प्रति क्या प्रेम है, अफेक्शन, लव, प्रेम ही आपको सारे कार्य करवाता है। प्रेम को आप समर्पित करते हो सेवाओं के माध्यम से, लेकिन जब कभी भी हमारा कोई मैल इंटेंशन होता है या जब हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं या हम हमारा सेल्फ मोटिव्स के साथ कार्य करते हैं, तो परिणाम होता है कि प्रेम साइड में रह जाता है और हम अपनी निजी इच्छाओं को पूर्ति में लग जाते हैं। तो इससे परिणाम यह आता है कि पूरा जन्म बीत जाएगा लेकिन भक्त जो होता वो भगवत धाम तक पहुंच नहीं पाएगा, उसको दोबारा जन्म भी लेना पड़ेगा। इसलिए भक्ति को विशेष रूप से एकले व्हाट इज दैट जेई भजे सेई चतुर अभक्त ही निछार, कृष्ण भक्ति ना ही जाति कुलादि विचार, जेई भजे सेई चतुर, चतुर एक ही व्यक्ति है जो बजता है वही चतुर है, दूसरे शब्दों में जो बजता है वही चतुर है, जो नहीं बजता है वो मूर्ख नंबर एक है, चाहे वो कितना विद्वान हो, चाहे वो कितना शक्तिशाली हो, चाहे वो कितना धनवान हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, यू स्टिल ही स्टैंड्स इन इन कैटेगरी ऑफ अ फुलिश पर्सन, मूर्ख व्यक्ति के कैटेगरी में पड़ा रहेगा वो। इसलिए भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर एक शब्द का उपयोग हुआ है मद व्यपाश्रय, जो आपने पहले तात्पर्य के पहले लाइन में आपने पढ़ा, प्रभुपाद बताए कि परमेश्वर के संरक्षण में, परमेश्वर के संरक्षण में के अर्थ होता है कि वो कृष्ण के द्वारा गाइडेड होता है, कृष्ण के द्वारा वो शक्ति संचारित होता है, कृष्ण उसको हर कठिनाई में से उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये भी प्रभुपाद बताते हैं, समस्त कठिनाइयों के बावजूद भी वो दिव्य धाम को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि कृष्ण जब परमेश्वर स्वयं किसी व्यक्ति की सहायता करते हो, उस व्यक्ति को भला कोई क्या भी उसका बिगाड़ सकता है। लेकिन ये जानना बड़ा आवश्यक होता है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो पूर्ण रूप से शरणागत होने चाहिए, तभी भगवान इस प्रकार का स्पेशल फेवर उस भक्त को देते हैं। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं कि जो भी सर्विस, जो भी सेवा तुम, जो भी कृष्ण के लिए जो कुछ कार्य करोगे वो तीन प्रकृति के तीन गुणों से पर होता है, आध्यात्मिक अवस्था पर होता है। जब तक वो कृष्ण के डायरेक्शन में काम नहीं करता तो उसको प्रकृति के अंतर्गत कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के इसके विषय में कहते हैं कि भगवान जो ट्रांसलेशन, भगवान कहते हैं कि मत प्रसादाद अवापनोति, मत प्रसादाद वो मेरी कृपा से, मेरी कृपा से, इसका अर्थ था कि वो व्यक्ति क्वालिफाइड है कि नहीं है ये मैटर नहीं करता है, वो मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। मत प्रसादाद बिकॉज ऑफ माई, ये क्लियर वर्ड है, मत प्रसादात, मेरी कृपा से ये हो सकता है। भगवान स्वयं ये कह रहे हैं कि वो मेरी कृपा से मेरे धाम में आता है, अर्थात कृष्ण कृपा करेंगे उन लोगों के प्रति कि जिनमें शरणागति के जो छह लक्षण की चर्चा हमने पहले की थी, वो छह लक्षण उस भक्त में विद्यमान होने चाहिए। दैन्य का अर्थ होता है वो अपने आप को विनम्र माने, तुच्छ माने, ये नहीं माने कि हम भी किसी से कम नहीं, अगर वो मानेगा तब तक तो सो गई शरणागति उसकी, तो वो नहीं, फिर आत्मनिवेदन अर्थात सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए समर्पण, अपनी इच्छा तक भी, फिर भक्ति के अनुकूल कार्य को स्वीकार करना और भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्याग करना, और अवश्य कृष्ण रक्षा करेंगे ये विश्वास होना, श्रद्धा होनी, और कृष्ण ही एकमात्र आपके पालन करने वाले हैं। ये छह चीज होगी तब जाके कृष्ण आपसे आकर्षित होते हैं प्रपोर्शनेटली, आप जितनी मात्रा में उनके शरणागत होते हैं उतनी मात्रा में। लेकिन भगवान के जो भक्त नहीं है, जो योगा लेटर के माध्यम से जानना चाहते हैं, वो लोग सॉरी सो अगर वो ये प्रश्न पूछ सकते हैं, विश्वनाथ चक्र ठाकुर इसके विषय में कहते हैं कि भगवान जब ये कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है, चाहे वो सकाम भक्त हो या निष्काम भक्त हो, वो मेरा वैकुंठ मथुरा द्वारका अयोध्या इस प्रकार के धाम को प्राप्त करता है, लेकिन तब वो कोई ये प्रश्न पूछ सकते हैं अर्जुन कि जब प्रलय हो जाता है तो क्या होता है, तब तो ये आपके सारे धाम चले जाएंगे ना। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, मेरा धाम जो है वो मेरी तरह अनश्वर है, उसका नाश नहीं होता। जब संपूर्ण प्रलय हो जाता है तभी भी मेरा धाम स्थिर रहता है। अरे ये कैसे संभव होगा, क्योंकि ये मेरी अचिंत्य शक्ति के माध्यम से मेरे धाम को कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलिए ये बात तो समझ लिया, लेकिन ये बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं वो नैष्कर्म्य की स्थिति तक आ जाते हैं, अर्थात संन्यास तक पहुंच जाते हैं। वो लोग संन्यास भी ले लेते हैं और कभी कभी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करते हैं, जिसके लिए उनको कठोर तपस्या करनी पड़ती है, अनेक अनेक जीवन देने पड़ते हैं, और सब प्रकार की भौतिक आकर्षणों से मुक्त होने के बाद कोई व्यक्ति ब्रह्मबोध पहुंच भी जाएगा या उसको सायुज्य मुक्ति मिल भी जाएगी, तो इसके लिए उसको कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और यहाँ पर आप कहते हो कि केवल आपका शरण लेने मात्र से आपके भक्त सीधे भगवान आपके धाम में चले जाएंगे, और यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ, वो स्टिल कर्म में जुड़ा हुआ है, और यहाँ तक कि उसकी भौतिक इच्छा भी समाप्त नहीं हुई, और फिर भी वो आपके धाम को प्राप्त करता है, ये बात कृष्ण हजम नहीं हो रही, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस इज पॉसिबल। तब भगवान कहते हैं मत प्रसादाद, ये कैसे होता है, मेरी कृपा से होता है। और ये मत भूलो अर्जुन कि मेरी कृपा में अचिंत्य शक्ति है, ऐसी शक्ति है कि जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की कृपा इतनी शक्तिशाली है कि साधारण मनुष्य समझ ही नहीं सकता कि कैसे हो सकता है। इसलिए कुछ जैसे अलग अलग प्रकार के जो भक्त होते हैं, जिसमें हमने ये चीज समझना चाहिए कि कुछ भक्त होते हैं उनके लिए तीन प्रकार के भक्त हम मान सकते हैं, समझ लो कि इसको डिस्क्राइब करें तो एक होता है स्वनिष्ठिता, दूसरा होता है परिनिष्ठिता, और तीसरा होता है निरपेक्षता। तो स्वनिष्ठिता का अर्थ क्या होता है, जिसमें उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है अपनी जो निजी धर्म है, उनका कर्तव्य कर्म है, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, और सेकंड प्रायोरिटी में सोलह माला जप, साधना भक्ति, भागवत श्रवण, भक्ति शास्त्री कोर्स, श्रीमद भागवत सुनना, ये सब उनकी सेकंड प्रायोरिटी में आता है, और फर्स्ट प्रायोरिटी में वो आता है। तो ये भक्त भक्ति माने जाते हैं, लेकिन वो स्वनिष्ठिता भक्त होते हैं। और दूसरे एक प्रकार के भक्त होते हैं जिनका नाम होता है परिनिष्ठिता भक्त। परिनिष्ठिता भक्त का अर्थ होता है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कृष्ण भक्ति, और उनकी सेकंड प्रायोरिटी में उनकी निजी इच्छाएं और निजी इंद्र तृप्ति और उनका निजी वर्णाश्रम धर्म, ये सब उनका सेकंड प्रायोरिटी माता है, वो परिनिष्ठिता। और तीसरा होता है निरपेक्ष। निरपेक्ष का अर्थ होता है कि जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी कृष्ण भक्ति है, अर्थात कृष्ण का संतोष देना, और उसकी सेकंड प्रायोरिटी भी कृष्ण का संतोष ही है, और उसके जीवन में इसके अतिरिक्त और कुछ बचा ही नहीं है, वो केवल एक ही कारण से जीवन जी रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, अन्यथा उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, और वही वास्तव में उत्तम प्रकार की भक्ति मानी जाती है। तो ये सर्वकर्माणि शब्द का अर्थ यहाँ इस तरह से होता है. आई मीन दिस इज टेक्स्ट नंबर 57 में आएगा सर्वकर्माणि दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ. सो यहाँ पर भी है सर्वकर्माणि और आगे भी सर्वकर्माणि है. सो वो जो आगे वाला जो सर्वकर्माणि है दैट ऑल्सो वी रीड, आप पढ़िए उसको नेक्स्ट सर्वकर्माणि.
यहाँ पे एक क्वेश्चन है.
हाँ
यस, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मद भया आश्रय
मद विपाश
प्रोटेक्शन ऑफ. यस, तो हमारे जो आचार्य गण है उन्होंने कुछ और विशेष कुछ टिप्पणी वगैरह दिया है इस शब्द को लेकर, बाकी शिल्पा ने भी मेंशन किया है इसको पर्पोर्ट में दिया है.
नॉट मच स्पेसिफिक एक्चुअली, जो प्रभुपाद यहाँ पर बताया वो आचार्यों के द्वारा ही बताया गया है परमेश्वर के संरक्षण में. एक्चुअली ये जो व्यापाश्रय शब्द है यही शब्द को एलोबोरेट किया गया है कि व्यापाश्रय का अर्थ क्या होता है कि संरक्षण में. संरक्षण में बहुत सारे इसका बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग होती है इसकी संरक्षण का अर्थ, क्योंकि संरक्षण का अर्थ ये भी होता है कि कृष्ण सुरक्षा देते हैं. संरक्षण का अर्थ होता है मार्गदर्शन ऑल्सो कि कृष्ण आपको गाइड करते हैं. संरक्षण का अर्थ ये भी होता है कि सारी जिम्मेदारी पूरा चार्ज जीवन का भगवान खुद उठा लेते हैं. और देयर आर मेनी सच, संरक्षण को आप शरणागति के साथ जोड़ सकते हो, वो आर सरेंडर टू मी ऐसे. सो व्यापाश्रय मीन्स वो आर फुल्ली सरेंडर टू मी, मेरे संरक्षण में. अगर समझ लो कि कोई व्यक्ति अपनी हर चीज के लिए भगवान पर डिपेंड करना सीख जाता है तो वो व्यक्ति के लिए कृष्ण हैज नो अदर चॉइस लेफ्ट, कृष्ण को संरक्षण प्रदान करना ही पड़ता है. ही हैज टू गिव हिम एंटायर सपोर्ट एंड व्हेन कृष्ण गिव्स एंटायर सपोर्ट एंड दैट पर्सन इज द विनर ऑफ लाइफ, ही इज द अचीवर. उसने संसार में वो चीज प्राप्त की जो भक्ति के केवल भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है एंड दैट इज कृष्णा अटेंशन. बट हाउ यू कैन डू दिस, यू थिंक ऑफ कृष्ण, आप हमेशा कृष्ण का चिंतन करें, कृष्ण पर हमेशा निर्भर रहे और अपने सारे कार्य केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही करें और किसी उद्देश्य से ना करें, तब आपको कृष्ण का व्यापाश्रय पूर्ण आश्रय संरक्षण का प्राप्त होता है. इसलिए हमारे गुरुजन प्रभुपाद आचार्यगण और वो लोग कृष्ण के संरक्षण में रहकर के जीते हैं, इसलिए उनका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है बिकॉज दे आर सरेंडर फुल्ली. सो प्रभुपाद हैज मेंशन वेरी अप्रोप्रिएटली whatever is required for us. So,
oh, thank you, Babaji.
Yeah. So we can read the next.
This is Kavoli.
हाँ ये बोलिए.
आप लोग जी मुझे कुछ पूछने की अनुमति देते आप?
पूछिए.
आप लोग जी आप लोग जो अभी जो बताया तीन कैटेगरी के भक्त, स्वनिष्ठ और परिनिष्ठ भक्त और निरपेक्ष, तो क्या प्रभु जी ये तीनों कैटेगरी के भक्त की फिर अंत में गति क्या हो सकती है, इसके बारे में मुझे कुछ आप जानकारी दे सकते हैं
इनकी गति?
और हमारे शास्त्र में इसके कुछ उदाहरण हमारे कुछ प्रस्तुत है शास्त्र में कि इस कैटेगरी का भक्त का मतलब ये उदाहरण प्रस्तुत है इसकी गति होगी? प्लीज.
हाँ ऐसे तो उदाहरण तो आपको अनेक मिल सकते हैं, लेकिन गति के विषय में हम आपको बता सकते हैं कि जो स्वनिष्ठित भक्त होता है उसको शुद्ध होने में समय लगता है और उसकी भजन क्रिया कमज़ोर रहती है और इसका परिणाम ये आता है कि कई बार उसको जन्म पर जन्म लेने पड़े. परिनिष्ठित भक्त जो होता है वो मध्यम अधिकारी तक पहुंच सकता है मेहनत करके और उसके चांसेस है कि कृष्ण उनको इसी जन्म में वापस ले सकते हैं. लेकिन निरपेक्ष जो है वो भक्त जो है वो तो कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त तो कुछ सोच ही नहीं रहा है और इसके परिणाम स्वरूप कृष्ण उसको फुल गारंटी के साथ वापस ले ही लेते हैं. वो पूर्ण संरक्षण में मत व्यापाश रहा है वो. तो इसलिए तीनों भक्त यहाँ पर जब हम गति के विषय में बात करें तो किसी भी व्यक्ति की गति को प्रिडिक्ट करना, उसकी भविष्य बताना, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हर एक केस में सबका डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड होता है और कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर है, इसलिए उनको कोई बांध नहीं सकता किसी नियम के माध्यम से। वो चाहे तो स्वनिष्ठिता को भी निरपेक्ष की गति दे सकता है। जो व्यक्ति पूतना को यशोदा की गति दे सकता है वो क्या नहीं कर सकता है। इसलिए कृष्ण इज नॉट बाउंड बाय एनी रूल्स, उनकी कृपा शक्ति की कोई सीमा नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो पुतना जैसी है। कई बार कुछ लोग बोलते हैं ना, बोले ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। अरे भाई ये इससे आपको क्या फायदा होगा? जो भगवान ने पुतना को यशोदा की पदवी दी थी, जो तो कृष्ण को मारने आई थी। अभी आपके आसपास में जो भक्त है वो कृष्ण को मारने तो नहीं जाने रहे ना, तो आप व्हाई यू थिंक ऑफ यू नो बैड ऑफ देम कि ये वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसा है। आप इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि पुतना जैसी राक्षसी को भगवान ने माता का स्थान दिया तो वो क्या नहीं कर सकते। इसलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं प्रभु जी ये तो ऐसा ही है। अरे भाई तुम कैसा हो, तुम में कितने गुण हैं? दूसरों के दुर्गुण को देखने से पहले सबसे पहले हमें अपने गुण को दुर्गुण को देखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए स्वनिष्ठता भक्त, परिनिष्ठता भक्त या निरपेक्ष भक्त, ये तीन प्रकार के भक्त की गति का संपूर्ण आधार कृष्ण की अपनी स्वतंत्र इच्छा पर है। लेकिन तटस्थ होकर विचार किया जाए तो निरपेक्ष भक्त गारंटेड है और स्वनिष्ठता भक्त किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है, अन्यथा वो जन्म पे जन्म ले सकता है। और इसके उदाहरण तो कई हो सकते हैं, जो नए जुड़े हुए भक्त है वो सब स्वनिष्ठता के कैटेगरी में आ सकते हैं और परिनिष्ठता भक्त भी आ सकते हैं कि जिसमें वो लोग का प्रायोरिटी इम्प्रूव हुआ है। लेकिन अभी कहीं ऐसे है कि जो निरपेक्ष अवस्था तक नहीं पहुँचे और कुछ है कि जो निरपेक्ष अवस्था तक पहुँच भी गए हैं। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल, क्राइटेरिया हमने आपके सामने डिसाइड कर दिया, मैंने बता दिया कि दिस आर क्राइटेरिया। इज दिस फाइन?
थैंक यू ब्रो जी। अरे थैंक यू ब्रो।
या और कोई किसी को प्रश्न?
क्वेश्चन था क्योंकि जैसे हम देखते हैं डे टू डे लाइफ में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसमें प्रायोरिटीज, जैसे हम अगर स्टार्ट दूं
sorry for that, yes please go ahead।
मतलब जैसे एक एग्जांपल, जैसे गृहिणी है और वो घर में जैसे उसकी जो रिस्पांसिबिलिटीज है कि अपने माता पिता के लिए प्रसाद बनाना और ये, पर वो छोड़ के पहले हम प्रायोरिटी से माला करें वो सब हम उस पर ध्यान दें, लेकिन तो फिर कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज नहीं जाएगा कि आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन
नहीं, नहीं।
जो जरूरी है समक्ष जो है उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, आप प्रायोरिटी उसको दे रहे हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगा रहे हैं।
ये एक्चुअली ये समझने, वस्तु को समझने में जब हम अपने आप को कन्फ्यूज करते हैं तब ऐसा हो सकता है। भगवान कभी भी ये नहीं कहे कि तुम अर्जुन युद्ध करना छोड़ दो, भगवान कभी भी ये नहीं कहते हैं। लेकिन भगवान क्या कहे भगवद गीता में, तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धेच, आप युद्ध करो लेकिन पहले मेरा मुझे मन में रख करके युद्ध करो। अभी कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं माता पिता की सेवा करता हूँ या कुकिंग करता हूँ या झाड़ू पोछा लगाता हूँ या जॉब करता हूँ, इसलिए मुझे मैं कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा दावा करता है तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। वास्तव में कार्य बदलने के लिए भगवान नहीं कहते, चेतना बदलने के लिए कहते हैं। चेतना बदलने का अर्थ होता है कि आप जो भी कार्य करते हो उसके प्रति आपका भाव यही होना चाहिए कि आप कृष्ण की सेवा करें। हम इस चीज़ को देखते हैं लेकिन दूसरी एक चीज़ को नहीं देख सकते जो हम मिस कर रहे हैं। वो कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं कि हमारा भौतिक आकर्षण कितना कम है और आध्यात्मिक आकर्षण जो है वो कितना ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक आकर्षण से पीड़ित है, उसको अगर भौतिक आकर्षण ज़्यादा है और फिर अगर वो ऐसा कह रहा है कि मैं झाड़ू पोछा या जॉब कर रहा हूँ या व्हाटएवर इट इज़, तो उसमें उसको मैं प्रायोरिटी दूंगा और कृष्ण को कैसे प्रायोरिटी दे सकता हूँ। यूजलेस आर्ग्यूमेंट कि कृष्ण ये नहीं चाहते कि तुम छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ भी भूलना मत कि तुम्हारी जॉब और तुम्हारे झाड़ू पोछा या आई मीन वॉट एवर इट इज, वो आपको नेक्स्ट लाइफ में नहीं साथ आने वाले, आपके नेक्स्ट लाइफ में साथ आएंगे आपकी चेतना ओनली। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भागो, इसका अर्थ ये होता है कि आप जिम्मेदारियों के मध्य में कृष्ण को रखो, क्योंकि हमने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे उदाहरण ऐसे है कि जो गृहस्थ भक्त है उन लोगों ने भी कृष्ण को सेंटर में रख करके कृष्ण भक्ति का आचरण किया है। सो वी कैन नॉट से दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ कृष्ण और आई कैन नॉट रिमेन इन वो चेतना में मैं रह नहीं सकता। एक्चुअली हमारा आकर्षण है भौतिक चीज़ों के प्रति और हम चाहते भी है कि ये आकर्षण बना रहे, तो ये समस्या है, इसको हटाना है तो अभी ऑटोमेटिक प्रायोरिटी सेट हो जाएगी आपकी। प्रायोरिटी इज नॉट अबाउट व्हाट यू डू चैंटिंग और रीडिंग, प्रायोरिटी इज अबाउट आपका भगवान के प्रति प्रेम इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड मेंटेनिंग योर बॉडी इज द सेकेंड प्रायोरिटी। और उसमें मेंटेनिंग योर बॉडी, मेंटेनिंग इन द सेंस की मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन को मेंटेन करना और फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाता है, और कृष्णा भक्ति को मेंटेन करना ये सेकंड प्रायोरिटी होता है, उसको बोलते सुनिश्चितता। दैट इज द पॉइंट, इज दैट फाइन?
यस
डोंट, एनी मोर क्वेश्चंस? ओके सो अभी नेक्स्ट श्लोक भी कृष्ण अगेन सर्वकर्माणि शब्द का उपयोग कर रहे हैं।
दिस इज
व्हाट इज दैट? ओके सो टेक्स्ट नंबर 57 50। हाँ बोलिए।
प्रभु जी, आपने भी तीन प्रकार के भक्त बनाए, स्वनिष्ठ भक्त, निरपेक्ष और हरिनिष्ठ। तो तीन प्रकार के भक्त हैं, कनिष्ठ भक्त, उत्तम अधिकार, वो ये और वो सेम है?
वेल मे नॉट बी 100%, लेकिन आप कह सकते हो यस, बड़े पैमाने पे ये जिससे है कि एक कनिष्ठ होता है, एक मध्यम होता है और एक उत्तम होता है, ऐसा कह सकते हो, अपना प्रॉब्लम। सो टेक्स्ट नंबर 57।
जब मनुष्य कृष्ण गंगामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी, सॉरी सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, इसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो।
देखो अभी भगवान फिर से इस बात को दोहरा रहे, यू नो हम जो अभी चर्चा कर रहे थे उसी चीज को भगवान यहाँ फिर से दोहरा है कि मुझ पर, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो, आप करता मत बन जाओ कि मैं ही करूंगा, मेरे से ही होगा, मैं ये करूंगा, मैं, अरे भाई तुमसे कुछ नहीं होने वाला और तुम करोगे इससे इससे बिगाड़ोगे हजार चीज, इससे अच्छा है कि कृष्ण पर निर्भर रहो और कृष्ण जिस तरह से संरक्षण आपको प्रदान करते हैं उसके अनुसार कर्म करने के लिए प्रयास करो, तभी जाके आपकी सफलता हो पाएगी। मे बी यू कैन रीड द परपट, थोड़ा लंबा है बट यू कैन रीड इट।
जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता, उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे? यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए, इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्यों को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे, यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है, अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है।
सच अ ब्यूटीफुल परपट। प्रभुपाद जी ने सच अ नाइस परपट। प्रभुपाद जी ने इसका जो चीज हम चर्चा कर रहे थे उसका पूरा सेम चीज जो हम बताए आपसे, प्रभुपाद ने बहुत ही परफेक्टली इस चीज को आपके सामने एग्जांपल के साथ प्रस्तुत किया कि व्हाइल वर्किंग यू शुड थिंक दैट आई एम अपॉइंटेड, मेरा मुझे भगवान ने इस पर्टिकुलर कार्य करने के लिए चुना है। और साथ साथ में अभी भगवान प्रभुपाद जी ने ये भी मेंशन कर दिया कि कोई भी कार्य मनगढ़ंत कार्य करने के बाद मैं जो कृष्ण ने चुना था प्रभु जी, मैं क्या करूँ, भगवान मुझसे भगवान जो करवा रहे मैं कर रहा हूँ, अरे ऐसा लोगों को धोखा मत दो, भगवान आपसे कुछ नहीं करवा रहे, भगवान जो करवाना चाहते हैं वो गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से आपको बताते हैं, आध्यात्मिक गुरु के आदेश के माध्यम से। इसलिए ज़्यादा ओवरवाइज नहीं बनना चाहिए, भगवान जो बताते हैं वो अपने गुरु महाराज के थ्रू बताएंगे, और आप अपने गुरु के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त और जो कोई कार्य करोगे वो सब आपके मन की पैदाश होगी। इसलिए उसको आप कृष्ण भक्ति मान करके चलते हो सो ये आपकी भूल होगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति गुरु के आदेश का पालन करता है और गुरु के आदेश के अनुसार कार्य करता है तो वो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत की परम सिद्धि को, पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कहते हैं इसके विषय में कि सब प्रकार के अपने जो कर्म है वर्णाश्रम धर्म के आधारित, वो सब कुछ मुझे समर्पण करके करो, मैं ही तुम्हारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए और तुम्हारा एकमात्र जीवन का हेतु मैं ही होना चाहिए। इस तरह से तुम सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त और सब प्रकार के कर्म फल से मुक्त हो जाओगे, हमेशा मुझ में स्थिर रहो और मेरा चिंतन करो, यही मैं चाहता हूँ। और बलदेव विद्याभूषण इसके विषय में कहते हैं कि मुझे अपना एकमात्र लक्ष्य बनाओ और सारे अपने निजी कर्तव्य का समर्पण मेरे स्वामित्व ऐसा मुझे मेरे चरणों में अर्पण कर दो, मेरा पूर्ण आश्रय लेकर के अपने निजी कर्तव्य कर्म करो निरंतर मेरा चिंतन करते हुए। सो नाउ अगेन कृष्ण यूजिंग द सेम वर्ड सर्वकर्माणि। सर्वकर्माणि का अर्थ होता है विदाउट फॉल्स इगो, गिव अप एवरीथिंग, यू नो सरेंडर एवरीथिंग, ऑल योर एक्टिविटीज यू नो इन कृष्ण सर्विस, सारी चीज कृष्ण के सर्वकर्माणि। इसलिए भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु जी हमसे तो जितना होता है उतना होगा बस, बाकी अगर आपको मानना है तो मुझे सुनिश्चिता मानो, परिनिष्ठिता मानो, निरपेक्ष मानो, और नहीं मानना है तो मत मानो। ये वास्तव में फॉल्स ईगो का सिचुएशन है। अभिमान के कारण हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझसे तो इतना ही होगा, जो होता है कर लो ऐसे। लेकिन भक्त को विनम्र होना चाहिए और भक्त को ये सोचना चाहिए कि भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं है, वैष्णव या गुरु को हमारी आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान की आवश्यकता है, हमें गुरु की आवश्यकता और हमें वैष्णव की आवश्यकता है। अन्यथा तो आप देखते ही हो लोग मर रहे हैं, कितना पहुंच गया मृत्यु आंक, 50,000 के ऊपर तो पहुंच गया है, लोग मर ही रहे ऐसे ही। तो ऐसे लोग अगर मरेंगे तो पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जो लोग भगवान की शरणागत तो नहीं है वो लोग वास्तव में बेकार ही जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। लेकिन भगवान चाहते हैं कि तुम सुखी हो, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वकर्माणि, सारे कर्म मुझे अर्पण करो। लेकिन फिर मेरा क्या होगा, मेरी इच्छाओं का क्या होगा, मेरे मेंटेनेंस का क्या होगा, क्या तुम्हारा ये इस्कॉन संस्था इसकी जिम्मेदारी लेगा कि मुझे ये संभालेंगे वो संभालेंगे। जनरली ये जब किसी भक्त में कमज़ोर होता है, उसमें श्रद्धा नहीं होती, तो वो इस प्रकार से व्यवहार करता है, इस प्रकार से सोचता है। लेकिन उसको ये समझना चाहिए कि अरे भाई ये आसपास में इतने सारे चींटियाँ, ये इतने सारे हाथी, ये सबको जो भोजन देता है वो कौन से इस्कॉन संस्था हुए हैं, उन हमको कौन भोजन देता है, वो कृष्ण देता है तो तुम्हें क्यों नहीं देगा। वन शुड अंडरस्टैंड दिस कि भगवान कहते हैं मुझ पर निर्भर रहो। अब निर्भर रहो का अर्थ क्या होता है, निर्भर रहो का अर्थ होता है कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तो मुकुंदम, भगवान अवश्य मेरी सहायता करेंगे और मुझे कभी दुखी नहीं होने देंगे। और हर एक चीज़ के लिए कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए, हर एक चीज़ के लिए। अगर आपके सामने कोई समस्या है, डिपेंड ऑन कृष्ण, ही विल गिव यू ऑल द रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस। आपको जो भी कुछ कमी है, जो कुछ आपकी रिक्वायरमेंट है, वो कृष्ण फुलफिल करेंगे ना, व्हाई वॉन्ट ही डू दिस। इसलिए डिपेंड ऑन कृष्ण, देन यू कैन बी सक्सेसफुल। तो दिस हैज बीन गिवन बाय अवर आचार्यस कि वी शुड डू दिस वे, देन अवर सक्सेस इज गारंटेड। सो ये पिछले कुछ श्लोक है जिसमें अधिक एक्सप्लेनेशन आता है थोड़ा बहुत, बट विल कंटिन्यू कि व्हाट विल बी द रिजल्ट। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के आदेश को मानता है, ये आदेश को, तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, और नहीं मानता है। ओके, सो अभी तक हमने बताया कि जो भगवान की शरणागत होता है तो क्या परिणाम प्राप्त होता है, और जिसको भगवान की जो भगवान की बात को नहीं मानता है उसका क्या होगा, वो आने वाले कुछ लोगों को बताएंगे। सो एनी क्वेश्चन? किसी को कोई प्रश्न है और वी कैन कंटिन्यू? ओके, सो टेक्स्ट नंबर 58।